नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक संसद की संयुक्त समिति को भेजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत में अब तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का निर्माण करके आत्मनिर्भरता के एक नए चरण की शुरुआत करने का समय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान में जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर के कई वाहनों से टकराने के कारण लगी भीषण आग में 8 लोगों की मौत और 30 से अधिक घायल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम में निधन। और भारत ने अफ्रीकी देश लेसोथो के लोगों की खाद्य सुरक्षा तथा पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मानवीय सहायता प्रदान की। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। सदन की कार्यवाही आज सुबह जब शुरू हुई तो विपक्षी सदस्यों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर नारेबाजी शुरू कर दी। अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों से नियमों का सख्ती से पालन करने और संसद के किसी भी द्वार पर विरोध प्रदर्शन से दूर रहने का आग्रह किया।
संसद की गरिमा मर्यादा सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी।
उधर राज्यसभा में हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने सांसदों से जनता के विश्वास तथा अपेक्षाओं का सम्मान करने का आग्रह किया।
These parliamentary disruptions, no public trust and expectations, our fundamental duty to serve with diligence lies neglected. I urge every parliamentarian, regardless of party, to examine their conscience. The citizens of our democracy, 1/6 of humanity deserve better than this spectacle. We squander precious opportunities that could serve the greater good of our people.
दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू होने पर एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक के लिए संसद की संयुक्त समिति के 12 सदस्यों को नामित करने का प्रस्ताव रखा गया। अपनी समापन टिप्पणी में श्री धनखड़ ने खेद व्यक्त किया कि इस सत्र के दौरान लगातार व्यवधानों के कारण कामकाज की अवधि लगभग 40% थी। उन्होंने सदस्यों से लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति अपने विश्वास की पुष्टि करने का आह्वान किया। सभापति ने सार्थक बहस और विमर्श का आह्वान किया। श्री धनखड़ ने कहा कि नियम 267 के तहत प्रस्ताव को अनुचित रूप से आगे बढ़ाना खेदजनक है और सदन को गरिमा के साथ कार्य करना चाहिए। बाद में उन्होंने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी। संसद का शीतकालीन सत्र पिछले महीने की 25 तारीख को शुरू हुआ था। और जानकारी के लिए बात करते हैं संसद के बाहर उपस्थित हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार राय से।
धर्मेंद्र, संसद का जो शीतकालीन सत्र है आज भी जो है हंगामे के साथ संपन्न हुआ और कुल मिलाकर देखे तो करीब एक महीने तक यह सत्र चला और ज्यादातर समय हंगामे में ही बीता। बिजनेस समूह अडानी ग्रुप के कथित भ्रष्टाचार और अमेरिकी संस्था जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन के कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ कथित संबंध का मुद्दा भी पूरे सत्र में दोनों सदनों में छाया रहा। लेकिन एक ऐतिहासिक बात जो इस सत्र के दौरान देखने को मिली वह थी भारतीय संविधान की 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा। इस पर दोनों सदनों में व्यापक चर्चा हुई और चर्चा के बाद सरकार की ओर से दोनों सदनों में जवाब भी दिया गया। चर्चा के दौरान दोनों पक्षों के सांसदों ने गौरवशाली भारतीय संवैधानिक इतिहास की यात्रा के पन्नों को पलटा। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कई बार तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली और जहां तक बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में जो है चर्चा के बाद जवाब देते हुए कहा कि जो संवैधानिक यात्रा रही है देश की इसने लोकतंत्र को मजबूत करने का काम किया है। वहीं राज्यसभा में जवाब गृह मंत्री अमित शाह ने दिया लेकिन उनके संबोधन के दौरान अम्बेडकर डॉक्टर अम्बेडकर पर जो टिप्पणी की गई ये बातें मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को बहुत नागवार गुजरी। इसे लेकर टकराव की स्थिति दोनों सदनों में इस सत्र की समाप्ति तक बनी रही। लेकिन जहां तक विधेयकों की बात करें जो इस सत्र के दौरान पारित हुए उसमें एक राष्ट्र एक चुनाव जो विधेयक है वो लोकसभा में पेश हुआ और इसे जो है बाद में संसद की संयुक्त समिति की को भेज दिया गया। और सत्र में जो कई और महत्वपूर्ण विधेयक भी पारित किए गए, विमानन क्षेत्र को मजबूती देने वाला जो भारतीय वायुयान विधेयक है उसको संसद की मंजूरी मिली। वहीं जो औद्योगिक क्षेत्र है उनके लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाने वाला बॉयलर और ऑयल फील्ड विधेयक भी राज्यसभा से पारित किया गया। वहीं अगर प्राकृतिक आपदाओं में राहत और बचाव के कार्यों को मजबूती देने के लिए उससे संबंधित आपदा प्रबंधन विधेयक भी को भी व्यापक चर्चा के बाद जो लोकसभा की मंजूरी दी गई। जी निखिल,
धर्मेंद्र, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सांसदों ने कल दो भाजपा सांसदों के घायल होने की घटना को लेकर आज संसद भवन परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी ने डॉ बी आर आम्बेडकर का अपमान किया है। भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी का कल का व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण है। डॉ भीमराव आम्बेडकर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की कथित टिप्पणी को लेकर विपक्षी दल के सांसदों ने भी संसद भवन में विरोध प्रदर्शन किया। संसद से बाहर मीडिया से बातचीत में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने कहा कि डॉक्टर आम्बेडकर का कथित अपमान देश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया है कि जिन दो भाजपा सांसदों को कथित तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने धक्का दिया था उनकी हालत स्थिर है। संसद भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सांसदों को संसदीय मर्यादा बनाए रखनी चाहिए।
दो सांसद बीजेपी के जो राहुल गांधी ने धक्के मार करके चोट पहुंचाए वो हॉस्पिटल में है, उनका बहुत अभी सीरियस में नहीं है कंडीशन। हमारा एनडीए के सांसदों को हमने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते संसद का गरिमा को बनाए रखना चाहिए, हाथापाई नहीं करना चाहिए। जो भी बोलना है आप जुबान से बोलिए, शब्दों में बोलिए, ये बोलने का आजादी है।
केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घायल भाजपा सांसद प्रताप सारंगी से नई दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मुलाकात की। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी विपक्ष के नेता का पद संभालने में सक्षम नहीं है। श्री चौहान ने कहा कि देश की जनता लोकतंत्र और संसद का ये अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
कल जिस ढंग की हरकत की है वो केवल अशोभनीय नहीं अक्षम्य है। लोकतंत्र का गला घोंटना, लोकतंत्र का अपमान, ये कांग्रेस के डीएनए में है। जो अपराधी हैं वो आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन लोकतंत्र का ये अपमान हिंदुस्तान की जनता कभी सहन नहीं करेगी। संसद का अपमान भी हिंदुस्तान की जनता सहन नहीं करेगी।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि भाजपा नेता राहुल गांधी पर झूठी एफआईआर दर्ज करा रहे हैं।
सरकार का डेस्परेशन है, ये इसी चीज का सिंबल है कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज ऐसे एकदम झूठी बातें, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे, मैं उनकी बहन हूँ, इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते, और फ्रेंकली देश भी जानता है।
इस बीच राम मनोहर लोहिया अस्पताल के निदेशक डॉक्टर अजय शुक्ला ने बताया कि आज सांसद प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत की हालत बेहतर है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में डॉक्टर शुक्ला ने कहा कि दोनों सांसदों का रक्तचाप नियंत्रण में है और उनके सीटी स्कैन तथा एमआरआई रिपोर्ट सामान्य है। उन्होंने कहा कि श्री राजपूत ने चक्कर आने की शिकायत की और श्री सारंगी हृदय रोगी, इसलिए दोनों को वर्तमान में निगरानी में रखा गया है।
बीपी दोनों का कंट्रोल में है। हम लोग मुकेश राजपूत जी को थोड़ा भी सिर में भारीपन और चक्कर अभी भी हल्के हैं। सारंगी जी, उनको पुरानी हार्ट की प्रॉब्लम है, इसलिए दोनों को अभी ऑब्जर्वेशन कंटिन्यू करना है। अभी दोनों आईसीयू में ही हैं। जो सीनियर डॉक्टर्स, जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स हैं, वो डिसीजन लेंगे कि आगे क्या करना है।
एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित दो विधेयकों की संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया है। समिति में लोकसभा के 27 सदस्य और राज्यसभा के 12 सदस्य हैं। लोकसभा की कार्यवाही आज जब शुरू हुई तब विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान 129वां संशोधन विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन 2024 को संसद की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश किया। ये समिति संसद के अगले सत्र के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट सदन को सौंप देगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज एक औपचारिक समारोह में सिकंदराबाद में प्रतिष्ठित कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सीडीएम को राष्ट्रपति ध्वज से सम्मानित किया। राष्ट्रपति का ध्वज किसी भी संस्थान की व्यावसायिक उत्कृष्टता का प्रमाण है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता और रणनीतिक साझेदारी न केवल देश की सीमाओं की रक्षा करेगी बल्कि इसकी रणनीतिक वैश्विक साझेदारी को भी मजबूत करेगी।
The government of India has taken several measures to enhance indigenous capabilities of defense industry. Through initiatives such as Make in India, ease of doing business and development of defense industrial corridors, the government is encouraging Indian and foreign investors to invest in our defense sector.
राष्ट्रपति ने कहा कि अब भारत में तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का निर्माण करके आत्मनिर्भरता का एक नया चरण शुरू करने का समय आ गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के रानीडांगा में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर सलामी ली। कार्यक्रम में एसएसबी के महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद भी मौजूद थे। गृह मंत्री ने बल के जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सशस्त्र सेना के जवान समर्पण के साथ नेपाल तथा भूटान से लगी 2450 किलोमीटर सीमा की रक्षा करते हैं और नशीले पदार्थों के अवैध हस्तांतरण की जांच के लिए अपना कर्तव्य निभाते हैं।
खुली सीमा से नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को बड़ी मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवानों ने रोका है। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में केवल एसएसबी ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को नक्सल से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
राजस्थान के जयपुर में भाकरोटा क्षेत्र में हुए गैस टैंकर हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 8 हो गई है जबकि 30 से अधिक लोग घायल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि यह हादसा सुबह करीब 6 बजे अजमेर हाईवे पर रिंग रोड के पास गैस से भरे दो टैंकरों की टक्कर से हुआ जिसके बाद आग लग गई।
20 से ज्यादा ट्रक, दो स्लीपर बस समेत कुल 40 वाहन आगजनी की चपेट में आकर नष्ट हो गए। इसके कारण बड़ी संख्या में लोग झुलस गए। हादसे में घायल लोगों का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। इनमें से जहां कुछ की हालत गंभीर है, झुलसे लोगों की पहचान के लिए विशेष आईटी टीम लगाई गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मौके पर पहुंचकर घटना की पूरी जानकारी ली, साथ ही घायलों को समुचित उपचार उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। घायलों के परिजनों की सहायता के लिए अस्पताल प्रशासन तथा जयपुर पुलिस की ओर से हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी गई है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना में जान गंवाने वाले परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। राष्ट्रपति ने मृतकों के लिए प्रार्थना और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्थानीय प्रशासन घायलों की सहायता कर रहा है। उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। प्रधानमंत्री ने प्रत्येक मृतक के परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की है। वहीं घायलों की मदद के लिए 50,000 रूपये दिए जाएंगे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और इंडियन नेशनल लोकदल के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश चौटाला का आज दोपहर गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में निधन हो गया। वे 89 वर्ष के थे।
हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला 7 बार विधायक और 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। श्री चौटाला पहली बार 2 दिसंबर 1989 को मुख्यमंत्री बने थे और वे 22 मई 1990 तक इस पद पर रहे। उन्होंने 12 जुलाई 1990 को दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि 5 दिन बाद ही श्री चौटाला को पद से इस्तीफा देना पड़ा। फिर 22 अप्रैल 1991 को उन्होंने तीसरी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला, लेकिन 2 सप्ताह बाद ही केंद्र सरकार ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। 24 जुलाई 1999 को श्री चौटाला ने चौथी बार मुख्यमंत्री का पद संभाला।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में श्री चौटाला वर्षों तक सक्रिय रहे और चौधरी देवीलाल जी के कार्यों को आगे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के एक देश लेसोथो को मानवीय सहायता प्रदान की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये खेप रवाना कर दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा ने एक राष्ट्र एक चुनाव संबंधी विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, भारत में अब तकनीकी रूप से उन्नत उपकरणों का निर्माण करके आत्मनिर्भरता के एक नए चरण की शुरुआत करने का समय है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सशस्त्र सीमा बल के 61वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का गुरुग्राम में निधन। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।